अब अगली आयतों में इख्तलाफात को हवा देने वाले जुमले, एक एक जुमले को गौर कीजिएगा। इस पहली आयत को आप लिख लें, टॉपिक है, हेडिंग है, जैसे किसी ऐसे या मजमून की हेडिंग है। अब अगली आयतों में आपको पता चलेगा कि क्यों फिर टूटते हैं लोग, एक अकीदे का दावा करने वाले, एक खुदा को मानने वाले, क्यों इख्तलाफात में बढ़ते हैं। उसकी वजह फिरकावारियत, खुद को हक पे समझना, दूसरे को नीचा जानना, ये सब कुछ किस तरीके से आता है? इसलिए आता है कि जब आप में से हर बंदा अपने आप को हक पे समझे और दूसरे को पीछे कर दे, तो उसका नुकसान क्या है? आइए जरा अगली आयतों में अपने आप को टटोलते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला अपने नबी को इस बात की दावत देने के बाद क्या फरमाते हैं, आयत 65, या अहलल किताबी, अहले किताब, लिमा तो हाजू नबी इब्राहिमा, क्यों तुम झगड़ा करते हो इब्राहिम के मामले में। वह माउन जिलत तौरात वल इंजीलू, हालांकि नहीं नाजिल हुई थी तौरात और इंजील, इल्ला मिम बादी ही, मगर उसके बाद ही से कौन मुराद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अफला ताकिलुन, क्या तुम अकल नहीं रखते। ये किस झगड़े की बात है? दोनों का झगड़ा क्या था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम उनकी नस्ल से हैं। यहूद कहते थे इब्राहिम यहूदी थे, नसारा कहते थे इब्राहिम नसरानी थे। अब ये बात आपको मुझे नहीं समझ आती, लेकिन एक जुमला बोलूंगी इंशाल्लाह आपको सबको ये बात मेरे एक लफ्ज़ बोले बगैर जाए समझ आ जाएगी। आज के दौर में चंद मुसलमान बैठे और चारों स्कूल ऑफ थॉट को सामने रखें और फिर कहें, अबू बकर सिद्दीक हनफी थे, उमर फारूक शाफई थे, हजरत उस्मान मालकी थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो हम्बली थे। आप बताएं कि इस बात को सुनकर कोई आपसे क्या सवाल करेगा, इल्ला मिन बादी। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम, चारों आइमा कराम तो इन चारों की जिंदगी में थे ही नहीं, तो वो उनसे ताल्लुक कैसे जोड़ लेंगे। ये बात है, जब शख्सियात के साथ ताल्लुक जुड़ने लगते हैं तो फिर झगड़े इस किस्म से बढ़ते हैं कि हर बंदा अपनी ही तरफ निस्बत करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी थे, बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर दुनिया से गए, तो हर गिरोह का दिल करता है कि ऐसे मशहूर और ऐसे फाल शख्स के साथ अपना ताल्लुक जोड़े। जैसे आज भी लोग किसी बड़े बंदे को मिलेंगे, मैं उनकी शागिर्द हूँ, मैंने उनसे पढ़ा है, मैंने उनसे सीखा है, मेरा उस इदारे से ताल्लुक है, चाहे उस इदारे के नाम पर अभी एक बट्टा लगे हुए हैं, आपके अंदर करतूत ही नहीं, आप बता के भी शर्मिंदा करते हैं। अच्छा, उस इदारे के पढ़े हुए लोग ऐसे होते हैं, लेकिन लोग नस्बतें जोड़ते हैं। इसलिए मेरे तो मुंह पे कभी किसी का नाम ही नहीं आता कि अगर मेरी कोई खूबी होगी खुद ही दिख जाएगी और मैं खामी अपनी दूसरों को दिखाकर इदारों को बदनाम क्यों करूं। लेकिन ये फितरी बात है, लोग दूर से रिश्ता जोड़ लेते हैं अमीर से और करीब से गुजर के कट जाते हैं ऐसे लोगों से जिनसे आपको कुछ मिलना नहीं होता। इस आयत के पीछे एक वाकया है, चूंकि आयात वफद नजरान की तो पहले से ही चल रही हैं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब नजरान से लोग आए ना नबी सल्लम के पास, तो जो इर्द गिर्द के यहूद थे उनको भी पता चल गया। वो जैसे आपके घर कोई पकसन से मेहमान आए तो यहाँ वाले भी सारे कहेंगे अब आपके घर ही जाएं, उनको भी मिलते हैं, अच्छा मामू आए हैं तो मिलके बैठे, ये वो कुछ ऐसी कैफियत जहन में रखे। अब ये भी वहां पहुंच गए, बातें शुरू हो गई। बातों ही बातों में उन ईसाइयों और यहूद के जो अहबार थे उनके बीच में मुबाहसा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई, जैसे आपके घरों में सियासत पे होती होगी, कोई एक का नाम लेता होगा तो कोई दूसरे का, तो वो लड़ाई होने की कैफियत आ गई। यहूद के उलमा ने कहा इब्राहिम यहूदी थे, ईसाइयों के ने कहा वो ईसाई थे। इस पर आयत नाजिल हुई कि कैसे भाई, हाउ डज इट पॉसिबल, क्या ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे बच्चा अपने माँ बाप को कहे कि मैं आपकी शादी पे आया था, आप तो थे ही नहीं बेटा जी, आप कैसे आए थे उस शादी पे। तो याद रखिए कि ये फिरका वारियत की बुनियाद है। शख्सियत के साथ जब नाम जोड़ते हैं, याद रखिए शख्सियत कितनी भी अहम क्यों ना हो, है वो इंसान, कुल्लु मन अलैहि फान। लिमा तो हा जूना में झगड़ा क्या था, किस बारे में था? ये दावा कि इब्राहिम हमारे फिरके से ताल्लुक रखते थे, ये बात थी झगड़े की बुनियाद। सवाल पैदा होता है कि यहां तहाजून का क्यों आया, पीछे आपको याद है लफ्ज हमने पढ़ा था अल्लज़ी हाज इब्राहिमा। झगड़े के लिए लफ्ज जिदाल भी आता है, शजर भी आता है और हाजा भी आता है। हाजर किस झगड़े को कहते हैं, दलाइल। जिदाल जो होते हैं ना उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई मार कुटाई, इसी तरह मुनाजरा, उसमें भी बहस मुबहसा होता है, तो हा जीम जीम इसका रूट है। हज का लफ्ज भी इसी से है, इरादा करना, कसद करना। जब झगड़ा होता है ना, तो हर बंदा इरादा ये कर रहा होता है कि मेरी बात ठीक है। कुरान पाक में आगे आप पढ़ेंगे, फाइन हाजू का नबी सल्लम से कहा जा रहा है, अगर ये आपसे झगड़ा करे तो क्या मतलब होगा कि अगर ये तुझे तेरे इरादे से रोके। तो झगड़े में झगड़ा भड़ता ही कब है, जब हर बंदा अपने आप को हक पे कहे और दूसरे को बातिल पे कहने लगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बातें करने का फायदा कोई नहीं है, ये तो बस ऐसे ही एक वक्त गुजारी की बात है। हान तुम हो तुम वही लोग, हाउलाई वही, देखिए हान तुम के बाद फिर हाउलाई जरा सी एम्फेसाइज करने के लिए बात की गई है कि तुम हो ना वही लोग, जिसको हमारी जुबान में वो कहते हैं कि वो तो अपने ही तौर पे अपने आप को बात करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुम वही लोग हो क्या। हाँ जज तुमने झगड़ा किया, फी मलकुम बिही इल्मन, उस मामले में जिसका तुम्हें कुछ इल्म है। नोट करें, ये नहीं कहा कि फी मलकुम बिही ला इल्म, बल्कि तुम्हें पता है, तुम जानते बूझते। अब इस एक आयत के ना दो तर्जमे हो सकते हैं, अंदाज सिर्फ फर्क है, बात एक ही है। एक तर्जमा क्या हो सकता है, देखो तुम लोग अभी तक जो भी बहस मुबासा करते रहे हो वो इन चीजों के बारे में है जिनका तुम्हें कुछ इल्म है। ठीक है, एक मतलब यह है। फिर दूसरा इसका तर्जमा क्या बनेगा, सुनो तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब क्यों इस बात में झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं और अल्लाह ताला खूब जानता है। यानी अगले हिस्से को देखेंगे ना तो बात वाजे होगी। फलीमा तो हाजू ना, फिर तुम क्यों झगड़ते हो, फी मा लैसा लकुम बिही इल्मन, उस मामले में जिसके बारे में तुम्हारे पास कुछ इल्म है ही नहीं। वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अंदाज है सिर्फ डांट का, बस और कोई बात नहीं तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस बात का तुम्हें पता है और जिस बात का तुम्हें नहीं पता, तुम दोनों पे बहस करते हो। तुम्हारी ये यहूदियत और नसरानियत बहरहाल तौरात और इंजील के नाजिल होने के बाद पैदा हुई थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मजहब पे थे वो ना तो यहूदियत थी ना नसरानियत थी, वो तो सीधे रास्ते पे थे, वो निजात याफ्ता थे। और एक बंदे का हक पे होना ही काफी है, उसको किसी सबके लाखे की जरूरत नहीं होती। ये जो लफ्ज है ना हान तुम, शुरू में ये देखिए कितने लफ्जों का मजमू है, हा हा खाली खाली खा लिखे ना शुरू की, इसका मानी है खुज, पकड़ो, पकड़ने का मानी है इसमें, खुज पकड़ लो के मानों में। हम पढ़ेंगे आगे कुरान में, हा उमुख रऊ किताबिया, ये लो पढ़ो मेरी किताब, तो उसमें जमा के लिए उम का लफ्ज बढ़ाया गया। इसी तरह ये जो हा है ना, इसका दूसरा मानी लिखिए तंबीह, वार्निंग के लिए। हान तुम उलाई, यानी हाँ तुम हो ना वही। फिर आप देखिए कि अन फिर तुम, अन तुम जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, अन तुम से मुराद सब मर्द है, तुम सारे एक ही जैसे हो। हा अन तुम हा उलाई, फिर आगे लग आ गया, क्या होगा अब, ये तो आपको याद हो चुका होगा ना शुरू से कई दफा ये बात, हा प्लस उलाई दोनों का मजमू है, हाजा और हाजी ही दोनों की जमा होती है। बहरहाल मतलब कहने का ये है कि तुम वही हो जिन्होंने झगड़ा किया था, और अब उस मामले में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। पता क्या चला, खुलासा ले ले इस आयत का, झगड़े नहीं करने चाहिए। यहां मजहबी बहस मना है, कई होटलों के बाहर लिखा होता है ना, भला क्यों कुर्सियां मेज ना टूट जाए होटलों की, वो जो ड्राइवरों वाले होटल होते हैं बेचारों के वहां लिखा होता है यहाँ सियासी बैसे मन है, या उधार लेना देना मन है, हा? तो अल्लाह सुबहान तला यहाँ यही बात कह रहे हैं कि बहसों से क्या होता है। सच बताएं, मैं आपके ऊपर लेके कहती हूँ, आप अपने घर में एक पूरा दिन, पिछला कल का चले सोच लें या जो भी क्लोजेस्ट है जो आपको याद है, अगर आप अपने बच्चे से भी बहस करें तो फायदा होता है, शौहर से बहस करें फायदा होता है, सास से बहस करे फायदा होता है। तो उम्मत के तौर पे बड़े बड़े उलमा की बहसों से क्या मिलना है, मुफक्किरों की बहसों से क्या मिलना है, सिर्फ बहस बराए बहस। बहस वाला हमारा दीन नहीं। और आप देखिए किसी शख्स को अपनी इर्द गिर्द नजर डालें, क्वाइट स्माइली बहस नहीं करती। बच्ची आपको वो अच्छी लगेगी जो बहस ना करे, बेटा वो अच्छा लगेगा जो बहस ना करे, शौहर वो अच्छा लगेगा जो बहस ना करे, बुजुर्ग वो अच्छे लगेंगे जो बाल की खाल ना उड़ाएं। थोड़ी सी बात करें, करना क्या चाहिए, थोड़ी सी बात करें, उसके दिमाग में कंकर फेंके और पीछे हट जाए। अब उसको सोचने दें। बहस करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो फायदा क्या? बहुत एनर्जी है तो बोल दो। अब अल्लाह सुब्हान तआला बहसों को समेटते हैं। आओ हम तुम्हें बताएं इब्राहिम कौन थे। मा काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानी, या ना तो इब्राहिम यहूदी थे और ना वो नसरानी थे। फिर क्या थे भाई? यानी तुम दोनों ही झूठे हो। नोट करने की बात है ना। देखिए दोनों में से एक ही बार ठीक हो तो मान लिया कि एक हक ले रहा था, एक उसका छीन रहा था, तो इसको हक दिलाओ। यहाँ का तू भी झूठा, मैं भी झूठा। ऐसे ही किसी का $100 पड़ा हो इधर, तो दो ऐसे लोग दावेदार हो जाए जिन दोनों का ही नहीं है। ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला कहते ना यहूदी थे ना नसरानी थे। तो फिर एक आखिरी सवाल बचता है दिल में, क्या थे? कवला किन का न हनीफा मुस्लिमा, वो तो बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह के फरमा बरदार थे, फोकस्ड थे। अल्लाह में फोकस्ड बना दे। डिटर्मिंड थे, अपनी धुन के पक्के थे, अपने मकसद के धनी थे। इब्राहिम न इधर देखते थे न उधर देखते थे, वो तो सीधे चलते थे। मा कान मिनल मुशरिकीन, और ना वो मुशरिकों में से थे। कुरान के नजूल के वक्त अरब में ये तीनों तबके मौजूद थे, यहूद भी थे, नसरानी भी थे और मुशरिकीन भी थे। तीनों किसी न किसी ताल्लुक के नाते हजरत इब्राहिम से ताल्लुक जोड़ लेते थे। मुशरिकीन ने अरब हजरत इस्माइल की नस्ल से होने की वजह से, और खाना काबा के साथ ताल्लुक की वजह से इब्राहिम से ताल्लुक जोड़ते थे। यहूदी नसरानी अपना पीछे से ताल्लुक जोड़ते थे। कुरान ने साफ कह दिया कि इब्राहिम क्या थे? मुसलमान, मुसलमान थे। कभी अल्लाह हमारे लिए भी ये बात कह देना तो हम भी सुरखरू हो जाएं। आज अपने ऊपर लेकर सोचें, आज का मुसलमान जितना मर्जी वजाकता में यहूद और नसारा बन जाए, फिर साथ खुद को मुसलमान कहे, उसकी वैल्यू नहीं है। इस्लाम जो है ना, ये एक नाम नहीं है। इस्लाम एक मिजाज है, एक रवैये का नाम है। पीछे आप देखिए, हमने इतने चुने हुए लोगों की कहानियां पढ़ी है ना, जकरिया और जाहिया और हजरत इमरान और उनकी बीवी और उनकी बेटी मरियम, मरियम का बेटा। कहने नहीं पड़ता, नो क्वेश्चन एट ऑल। देखिए शक कहाँ पड़ता है? जहाँ समथिंग इज दिस समथिंग इज दैट। एक बंदा आज भी हाल हुलिये में, अखलाक में, आदात में इस्लाम का चलता फिरता नमूना बन के बाहर दिखे, किसी को डाउट ही नहीं पड़ेगा ये कौन है। आज क्या हमारा नहीं ये मसला? आप छोड़ें इस आयत की बैकग्राउंड को, अपने ऊपर लाइए। क्या आज हम किसी न किसी एंगल से अपने आप को इन दोनों मजहबों के बीच में फिट करने की कोशिश नहीं करते? फिर बाद में हम कहते हैं तो वैसे मुसलमान ना। शुक्र है मुसलमान यहूदी हैं, शुक्र है मुसलमान नसारा। हम हैं मुसलमान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अब इसके बाद जो भी हैं, फिर वो तो मजबूरियां भी तो होती हैं ना। इस्लाम में कोई मजबूरी नहीं है। फोकस्ड बंदा कभी मजबूर नहीं होता। जो किसी से लेके खाता ही नहीं है वो डरे क्यों? जिसको किसी की कोई परवाह नहीं है वो किसी की खुशी नाराजगी से मुतासिर हो तो क्यों हो? इसलिए मुझे आपको फोकस्ड बनना है तो हमें सर डालकर, आंखें झुकाकर अल्लाह के दिए हुए मामलात पे अपनी जिंदगी को चलाना है। ये सिंपल सा मैसेज है। मैंने शुरू में भी अर्ज की थी कि सूरह बकरा में ईमानियात की बड़ी बात है ना, तो सूरह आले इमरान में इस्लामियात की बात है, या इस्लाम की बातें हैं। अफसोस की बात है, आज हम अपने आप को मुसलमान भी नहीं पूरा कह पाते। बाकी बातें तो दूर की बात है। और आपको पता है कि ये जो आयतें जो हमारे सबक के शुरू से चल रही हैं, बुखारी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल रोम को खत लिखा था और यही आयत लिखी थी कि कुल ताल इला कलिमत सवाम बैना नव बैना कुम, कहा देखो अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तुझे दोहरा अजर मिलेगा, वरना सारी रियाया का गुना भी तुझ पे होगा। फास्लिम तस्लम اسلم يوتيك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم الاريسين. تو اسلام سلامتی ہے. ابراہیم علیہ السلام مسلم ہوئے تھے اسی لیے سلامت رہے، لوگ ان کا کچھ کر نہ سکے. بڑے لوگ دین پہ آ جائیں تو چھوٹوں کا دین پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت لینے پہ تو سارے ہی لڑ رہے ہیں، ہے نا، यहूदी नसरानी और सारे आज मुसलमान भी। तो उन जैसे अमल करने के लिए कितने लड़ते हैं? उन जैसी कुर्बानियां देने के लिए कौन लड़ते हैं? उन जैसी हिजरतें करने का किस किस को शौक है? और आपको पता है कि हजरत इब्राहिम और मूसा के बीच में कितना वक्त था? 1,000 साल, यानी 10 सदियां बाद में मूसा आए, और मूसा से भी कितना बाद यहूदियत शुरू हुई। और इब्राहिम और ईसा के बीच में कितना वक्त था? 2,000 साल। 20 सदियों के बाद की शख्सियत को आप अपने नाम से जोड़ रहे हैं, है ना हैरत की बात। तो ये बेअकली की बातें हैं, झगड़े अच्छे नहीं लगते। और हनीफ कौन होता है? हनाफा से, जनीफ का ऑपोजिट, सबसे मुंह मोड़कर एक तरफ जुड़े। आज आप देखिए हमारे कल्चर में हनीफ नाम भी रखा जाता है, और हनीफ नाम से हमें सुन के कभी नहीं फीलिंग आई कि ये कौन होगा, कैसा होगा। लेकिन असल बात यह है कि जब एक बंदा हकीकत में अल्लाह की तरफ चढ़ पड़ता है तो वो हनीफ बन जाता है। थोड़ा सा इस लफ्ज़ को देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। हन्नफु कहते हैं पायों का टेढ़ा और बूढ़ा होना, पाँव जो होते हैं ना वो थोड़े से टेढ़े हो जाए ना तो उसकी तरफ इशारा होता है। रिजलुन खनफाओ, मुड़ा हुआ पाँव। हनीफ कौन है? जो गलत रास्ते से हटकर सीधी राह पर आ जाए, गुमराही से हटकर इस्तकामत की तरफ माइल होने को हनफ कहते हैं। यकसु माइल होने को भी कहते हैं, हनीफ माइल होने से, जो माइल हो गया। उस दौर में सब कुफर की पैरवी कर रहे थे, इब्राहिम ने मुखालफत की और उस रास्ते से हटकर सिराते मुस्तकीम पर आ गए। अल्लाह मुझे आपको हनीफ बना दे। आज भी सबसे मुश्किल हनीफ बनना। आपको तो कि मुस्लिम बनना फिर भी आसान है, कहलाना भी आसान है, लेकिन इससे ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। अब सवाल पैदा होता है कि ना तो वो यहूदी थे ना नसरानी थे, तो फिर वो क्या थे? हनीफन मुस्लिमन तो कह दिया, लेकिन अब साथ ही मुसलमानों के साथ उनकी निस्बत जोड़ी जा रही है गैर मखसूस तरीके से, इन्ना उलन्नासि बि इब्राहीम अललजीना तबउहू व हज़ा नबी वल्लजीना आमनू। सुभान अल्लाह, अंदाज देखिए कायद का। यकीनन इब्राहिम से सबसे ज्यादा कुर्बत रखने वाले लोग तो वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। थोड़ा सा नोट करिएगा पीछे, यहाँ सीधा सा ये जुमला ऐसे नहीं आ सकता था, आयत पे नजर रखेंगे तो समझ आएगी। इन्ना उलन्नासि बि इब्राहीम अल मुस्लिमून, देखिए ना वहां यहूदी और नसरानी नाम आए हैं ना, तो उनके साथ तीसरा मजहब कौन सा है? इस्लाम। तो सीधी सी बात थी कि इब्राहिम से करीबी लोग जो हैं वो तो मुसलमान है, ये नहीं कहा। नोट करें, ये नुक्ता है नोट करने का, हर मुसलमान नहीं है उनसे ताल्लुक रखता। कौन? अल्लज़ीना तबउहू, जो उसकी पैरवी करेगा। समझ आई? खुला मैदान कर दिया कि यहूद और नसारा में से भी वो लोग जो इब्राहिम के तौर तरीके अख्तियार करते थे, ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले हक मजहब पे थे। बात समझ आ रही है? आपको बताया था ना कि नबी सल्लम के दुनिया में आने से पहले पहले यहूद और नसारा में बहुत सारे मुसलमान गुजरे हैं, ये उनका जिक्र है। ये आपने मिस कर देना था इसलिए मैंने अलग से बोला। जो अपने दौर के मुसलमान थे, जो यहूद में से सही मजहब पे थे, जो नसारा में से सही मजहब पे थे, ये बात तो कल थी, खत्म। अब वहाज़न नबीयू, और ये नबी यानी अगर निस्बत है किसी से इब्राहिम को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले। वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, और अल्लाह इन मोमिनों का साथी है। अहले ईमान का हामी और मददगार अल्लाह है। कितना प्यारा ताल्लुक जोड़ दिया अल्लाह ताला ने इन आयतों में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक की खूबसूरती किस शख्स की है? जिसने उनके तरीके पे अमल किया। नामों से कुछ नहीं होता, आप देख रहे हैं ये सारी आयतें नामों को तोड़ती हैं। फिरके के नाम हो, शख्सियात के नाम हो, इनको पीछे करो, काम क्या करते हो वो देखो। क्या आज तुम भी शिर्क से बेजार हो? आज हर बंदा इब्राहिम से ताल्लुक रखता है। कौन? जो शिर्क से बेजार है, जिसका तरीका कुर्बानी वाला है, जो वक्त और मुआशरे के रिवाज के आगे अपने आप को बेबस नहीं कर लेता, जो अल्लाह के माँ सिवा की तरफ झुकता नहीं, जिसकी मोहब्बतें, जिसके जज्बे, जिसकी दुआएं, जिसकी इताअत, जिसकी सारी सरगर्मियां अल्लाह के लिए हों, वो आज भी हनीफ है। जो अपना सारा कुछ अल्लाह के हवाले कर दे, वो आज भी मुस्लिम है। خالص پکے سچے مسلمان. دیکھیے وما کانا مشرقین میں ایک تو مشرقین مکہ تھے نا, دوسرا یہ کہ یہود نصارہ کے عقیدے میں اب جو شرک پیدا ہو گیا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو دعا کریں اپنے آپ کے لیے, میں بھی اور آپ بھی, کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ان اول الناس. یہ اولا لفظ کیا ہے بھائی؟ ولی سے ہے. ولی ولایت قرب قریب کا تعلق. اولا وہی ہے جیسے افضل اکرم امجد اصغر. جب اس کے اندر لفظ لگتا ہے نا اولا یعنی سب سے اونچا, ولایت کا اعلیٰ درجہ بہت اوپر, کلوزیسٹ کے معنوں میں یا نیئرسٹ کے معنوں میں, یعنی اصل قربت ہے کسی کو تو وہ ان کو ہے جو ان کی پیروی کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو طریقوں پہ چلیں گے ان کے, جو اپنے لائف سٹائل کو ان جیسا کریں گے, جو حقیقت میں اپنے معاملے کو اللہ کے اوپر ڈالیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے دوست ہوتے ہیں, میرے دوست میرے باپ اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ناولن ناسب ابراہیم اللذین تبعوہ. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں اسلامی نقطۂ نظر سے ایمان کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے. ہم کہتے ہیں نا خون کے رشتے, وہ ہیں, ان کو نہیں چھوڑ سکتے آپ, ان کا کوئی معاملہ اس سے الگ نہیں ہے, بٹ اصل رشتہ ایمانی رشتہ ہے. قرب ہی آپ کو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ ایمان کو اپنے دل میں محسوس کریں گے اتنا وہ شخص جو اسی درجے پہ ہوگا وہ آپ کو اپنا لگنے لگے گا, پھر اس کے ساتھ ہی بات بنتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں, مختلف علاقوں میں, لیکن مقصد ایک ہونا تو لوگ مل جاتے ہیں. پوری دنیا آپ کے لیے ایک فیملی بن جاتی ہے, ایک مقصد کے لوگ, ایک کاز کے لیے لڑنے والے لوگ. اور میں مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتی ہوں, مختلف جگہوں پہ موقع ملتا ہے, مجھے صرف شکلیں فرق لگتی ہیں, یقین کریں. تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ کا فرق ہوتا ہے, بولنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے, چلنے کا, کھانے پینے کا, لیکن جو اندر کا انسان ہے نا, تڑپنے والا اور قربانیاں دینے والا, وہ مجھے ہر جگہ ایک ہی لگتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں اچھا یہ جذبے ہوتے ہیں جو لوگوں سے دین کا کام لیتے ہیں. کیوں؟ اندر سے ایک ہے یہ قربت, یہ ہے اولا. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کچھ لوگ دور ہیں لیکن وہ مجھے اپنے قریب محسوس ہو رہے ہیں. آپ میدان جنگ میں اور لوگ گھر بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ میرے قریب ہیں, اور کچھ مدینہ میں رہتے تھے تو آپ کو قریب نہیں تھے. تو یہ مقصد کی دھن ایک ساتھ رکھتی ہے, یہ تعلق لوگوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. یہاں سے آپ دیکھیں ایک جماعت اور ایک گروہ اور ایک ٹیم بھی مضبوط ہوتی ہے. لائک مائنڈیڈ لوگ, ایک مقصد کے لیے جینے والے لوگ کبھی ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں آتی نہیں ہے, 100 باتیں ایک دن میں آ سکتی ہیں, پر وہ مٹی ڈال کے آگے چل پڑتے ہیں. لے میں اپنی اتنی پیاری بہن کے لیے بات سوچوں, وہ تو اتنا دین کا کام کرتی ہے اور میں اس کے لیے بدگمان ہو جاؤں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بدگمان ہو, جو گھروں میں بیٹھے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے, وہ بڑے اچھے ہیں مزے کر رہے ہیں, تو جو ادھر آتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچوں. یہ سوچ آپ کا دل پاک کر دیتی ہے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمی اور کمزوریوں سے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے جب سوچ ایک ہوتی ہے تو بیچ میں زمانے اور علاقے کی حدیں حائل نہیں ہوتی. آج ابراہیم کا نام لیں تو دل میں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت ہے, سارے زمانے بیچ سے کٹ گئے, کیونکہ وہ قرب تھا. اور ایک سوچ ہوتی ہے تو بندے کو محبت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے. اور بعض لوگ آپ کے خون کے رشتے کے ہوتے ہیں, آپ یاد کرتے ہیں ارے 10 سال بعد ملی ہوں ان کو, ان کا تو کبھی خیال بھی نہیں آیا مجھے. یہ تو اب نیٹ نے ہمیں اس رشتے داروں سے قریب کر دیے, کہاں کبھی ہم سنتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کبھی ایک دفعہ سال میں پاکستان جانا اور کسی سے ملاقات ہوئی, کسی سے نہ ہونی, واپس آ جانا, پھر اگلے سال. کوئی 5 سال بعد آپ کو اپنی کوئی کزن کوئی اپنا رشتے دار ملے, ارے آپ سے 5 سال بعد ملاقات ہوئی, نہ ذکر نہ کوئی بات. یہ تو اب دنیا واقعی ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے نا, ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہ دعا کیجیے کہ اللہ کی ذات ہمارا بنیادی نقطہ بن جائے. جیسے دائرے کے اندر ایک کمپس کی ڈنڈی ہوتی ہے نا, وہ ایک ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے. اللہ ولی المومنین, کتنا پیار اللہ کس جملے میں جھلک رہا ہے. اصل مجھے پیار اپنے مومنوں سے ہے جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جیتے ہیں. اور ایمان والے صدیاں گزرنے پر بھی, زمانے گزرنے پر, زمین اور وطن کے فاصلے حائل ہونے پر بھی, خاندان اور برادریاں مختلف ہونے کے باوجود بھی ایک ہوتے ہیں, اور ایک ہی رہنا ہے آپ نے. پھر ہی آپ اللہ کی دوستیوں کو پائیں گے۔ یہاں بات پوری ہو گئی، جہاں تک سبق شروع ہوا تھا نا اس وقت تک اب پہلی بات پوری ہو گئی ہے۔